الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ایک صاحب نے پوچھا ہے فنا فی الشیء کیا ہے. مختصر بات کہ شیء کے ساتھ اتنی محبت ہو جائے کہ اس کی بات کے سامنے اپنی بات کی کوئی حیثیت نہ رہے, یہ فنا فی الشیء ہے. البتہ یہ طریقہ جو ہے یہ مختصر ترین طریقہ ہے جس میں انسان اپنے شیخ کو سب سے زیادہ وہ چاہتے ہیں اور اس کے ہی بات کو اصل بات سمجھتے ہیں, اس کے تحقیق کوئی اصل تحقیق سمجھتے ہیں اور اس میں کوئی آگے پیچھے بات نہیں کرتے. جن کو اللہ پاک یہ نصیب فرما دیں تو ان کے لیے اگلی منزل بہت آسان ہوتی ہے فنا فی الرسول کی, جس کے ذریعے سے وہ یوں سمجھ لیے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کو محبت تھی اور صحابہ کرام ذرا بھر بھی دوسری بات کو نہیں سامنے لاتے تھے, تو اس وجہ سے حتیٰ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ نے یہاں تک کہا ہے, انسان حیران ہو جاتا ہے, یہاں تک فرمایا کہ جو نماز سہو جس میں سہو ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس میں بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سہو نہیں ہوا تھا, تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے کاش مجھ سے بھی سہو ہوتا, یعنی میں ان کی طرح اس مسئلے میں بھی ہوتا. تو یہ گویا کہ واقعی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے سامنے تھے لہذا ان کا تو یہ براہ راست تھا. البتہ ہم لوگوں کو فنا فی الشیء کے ذریعے سے یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے. ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے شیخ میں فانی تھے, فنا فی الشیء تھے, سلیمانی اپنے ہر چیز کا ان کی طرف وہ کر لیتے, اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ اپنے شیخ میں فانی تھے, اس وجہ سے انہوں نے یہی کیا. وہ ذرا وہ کتاب نکالے وہ جو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارمان سلیمان, تو ان کے کلام سے یہی چیز ہی مطلب سامنے آتی ہے کہ دیکھیں مثال کے تو پڑھیے جو ان کے اشعار ہیں, اے مسیح درد دل چارہ گرے آزار دل, پا رہا ہے تیرے درماں سے شفا بیمار دل, دور با شفکار باطل, دور با شغیار دل, سج رہا ہے شائع خوبہ کے لیے دربار دل, اور ہی مٹ جائے گی تاریکی افکار دل, خانہ دل میں جو پھیلیں گے کبھی انوار دل, تیرے ایک چینٹے سے ابر بہاری ان دنوں, سبز ہے شاداب ہے سیراب ہے گلزار دل, دور ہوتی جا رہی ہے ہر کٹک جو دل میں تھے, تیرے سوزن سے نکلتے جا رہے ہیں خار دل. یہ مطلب یہ کہ جو دل میں مسائل تھے وہ آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں, وہ جیسے سوئی سے کوئی چیز نکال رہے ہیں آپ. ہاں تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو شیخ پہ فریفت ہو جاتا ہے ہاں جی, تو ان کے لیے سارے رستے آسان ہو جاتے ہیں, اور جس میں ذرا بھر بھی آگے پیچھے کوئی بات رہ جائے تو بس پھر مشکلات ہوتے ہیں. ہاں جی جیسے یہ, کیا بری تاثیر میں مطرب تیری آواز ہے, جو تیری محفل میں بیٹھا وہ سراپا ساز ہے. ہاں جی باغ میں سہارا نظر آتا ہے اور سہارا میں باغ, اب میرے جوش جنوں کا اور ہی انداز ہے. ہاں جی تو یہ ہر چیز کے اندر ان کا یہی ہوتا تھا کہ شیخ کی محبت, شیخ کی محبت, شیخ کی محبت. تو ظاہر ہے ان کو پھر اللہ پاک نے دن بھی دے دیا. تو یہ ہے کہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے. کیوں, وجہ کیا ہے کہ باقی طریقوں میں قوت ارادی کا استعمال ضروری ہوتا ہے. مثلا پہلے طریقے میں ہر کام میں قوت ارادی کی ضرورت پڑتی ہے, خیار میں, ابرار میں, صرف اس چیز میں کہ میں نے شیخ کی بات ماننی ہے, اس میں قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو فنافِ شیخ ہوتے ہیں ان کی قوت ارادی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, وہ چونکہ خود ہی فریفتہ ہوتے ہیں, وہ خود ہی وہ چاہتا ہے کہ جو شیخ کی بات ہے میں اس پر عمل کروں, اس وجہ سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. السلام علیکم حضرت جی, عرصہ 8 سال سے نسوار جیسے موذی چیز میں مبتلا تھا, 1 سال ہو گیا, آپ کی برکت سے خلاصی پائی, پھر سگریٹ نوش شروع کی, اب تقریباً 2 ماہ سے اس سے بھی جان چھوٹ گئی ہے, اور کافی عرصہ ہو کہ موبائل پر ویڈیو گیمز بھی کھیلنا بند ہو گئی ہے, اور اب موبائل استعمال کرتے دل اکتا سا جاتا ہے. حضرت جی یہ سب آپ کی برکت ہے, اس سے ممکن ہو حضرت جی مزید یہ کہنا کہ لوگوں سے بیزاری ہوئی ہے, بس کاروبار میں گھر اور خانقاہ, گھر جا کر بھی اپنے کمرے میں رہتا ہوں کیونکہ گھر میں نامحرم خواتین بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے, اللہ جل شانہ آپ کو مزید توفیقات سے نوازے, سلسلے کے برکات سے زیادہ حصہ نصیب فرمائے. السلام علیکم حضرت جی, میں فلاح ہوں, اللہ پاک آپ سے راضی ہے ہوں اور عافیت میں رکھے. حضرت جی کچھ دن پہلے آپ نے ایک بات بیان میں فرمائی تھی, اس سے الحمدللہ فائدہ ہوا. آپ نے اس طرح کچھ فرمایا تھا, فرائض واجبات سب کے لیے لازم ہیں, لیکن مستحبات کی ہر ایک کی اپنی ڈومین ہے, اور اس میں رہ کر ترقی کی ہر کوئی اللہ پاک کو راضی کر سکتا ہے, اور کسی کی کون سی ڈومین ہے کسی کی کون سی, یہ اندازہ شیخ کو ہوتا ہے زیادہ. یعنی کوئی عبادات میں مستحبات میں آگے نکل سکتا, کوئی معاملات میں, کوئی معاشرت میں, کوئی اخلاق میں, مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا. اس سے مجھے الحمدللہ حوصلہ ہوا, ورنہ میں جب بھی دوسروں کو کسی بھی اچھے کام میں آگے دیکھتے پریشان ہوتی تھی کہ ماشاءاللہ یہ کتنا کام کر رہی ہیں, میں تو کچھ بھی نہیں کرتی. اس سے مایوس ہوتی تھی کیونکہ ہر وہ کام جو دوسرے کر رہے ہوتے وہ سب کرنا میرے حالات کے مطابق مشکل تھا. کبھی رش کر کے ہمت تو کرنی چاہیے لیکن جتنا ممکن بھی ہو, یا شیطان بالکل ہی خیال ڈال دیتے کہ تم کچھ بھی نہیں کرتے ہو, یا کوئی اور اچھا کام ہو تو فوراً نظر اپنی طرف بھی کرانے کی کوشش کرتا. میں دعا کرتی ہوں ساتھ ساتھ کہ بس جو بھی ہو اللہ پاک سے راضی ہو جائے, اور جو بھی توفیق مل جائے اس پر شکر کروں. حضرت جی اس صبح کے بیان میں آپ نے سلوک کے مقامات کا فرمایا اور توکل کا بھی, کہ بغیر یقین کے توکل نہیں ہو سکتا. ابھی تو میں دعا کرتی ہوں اللہ پاک کے وعدوں کو یاد کر کے, لیکن تھوڑی پریشان کبھی کبھی ہو جاتی ہوں, لیکن جیسے آپ نے فرمایا تھا اگلی طور پر اپنے آپ کو سمجھا لیتی ہوں صبر اور تفویض کے لیے, تو اختیار کی کوشش تو کر رہی ہو الحمدللہ, لیکن بوجھ تو محسوس ہوتا ہے. تو جب حقیقی طور سے جذب حاصل ہوگا اور سلوک طے ہو جائے گا تو پھر طبی طور پر بھی سب کچھ حاصل ہو جائے گا, یقین بھی واقعی پختہ ہو جاتا ہے, اور اس وقت پھر بوجھ بھی محسوس نہیں ہوتا. جیسے ابھی عقلی طور پر منمانا پڑتے اپنے آپ کو, معذرت شاید بات ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتے. نصب بات ٹھیک ہے, نصب بات میں کچھ بات کرنی پڑے گی. واقعی بات تو یہی ہے کہ یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ڈومین ہے, کوئی کس میں آگے ہوتا ہے, کوئی کس میں آگے ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی کسی کام میں, کسی مستحبات میں پیچھے ہے, تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ پیچھے, بلکہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے کسی اور کام میں آگے ہو. ہاں جی, اور میں اس میں پیچھے ہوں, لہٰذا مجھ سے آگے چلا جائے. تو اس وجہ سے اس کے ساتھ اچھا گمان کرنا لازم ہے. البتہ یہ جو بات ہے, رشک ہر ایک پہ کرنا چاہیے. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایک آدمی کی 10 دکانیں ہیں اور ایک آدمی کی 1 دکان ہے, تو ایک دکان والے 10 دکان والے پہ رشک کرے گا نہیں کرے گا؟ ठीक है, 10 दुकान में एक वक्त में काम करना बड़ा मुश्किल होता है, तो ज़ाहिर है कोई एक ही दुकान रखता होगा, लेकिन जिसके 10 दुकानें होगी तो उस पर लोग रश करेंगे नहीं करेंगे। तो एक शख्स है जो मुस्ताहबात जो इबादात में है वो भी कर रहा है, जो मामलात में वो भी कर रहा है, जो माशरत है उसमें भी कर रहा है, और जो अखलाक है उसमें भी कर रहा है, तो काबिल रश्क सूरत वो है। इसमें मैंने जो बताया था इसका मतलब सिर्फ ये था कि दूसरे के बारे में सोचा जाए, कि मतलब दूसरा जो है, मतलब यानी अगर यानी किसी एक में चल रहे हो दूसरे में नहीं चल रहा, तो समझो कि मुझसे शायद किसी और चीज़ में आगे होगा, यानी उसके साथ हुस्ने ज़न की सूरत बन जाएगी। ये नहीं कि अपने आप को तसल्ली दे दे कि बस ठीक है जी, मैं तो भाई ठीक चल रहा हूँ तो ये मतलब ये है कि दूसरे के साथ हुस्ने ज़न का एक ज़रिया है। हाँ जी, कि मुमकिन है कोई दूसरा किसी और में आगे हो और मैं उसमें पीछे हूँ, तो उसके साथ हुस्ने ज़न की सूरत बन जाएगी। बाकी ये कि सलूक के जो मुकामात के बारे में फरमाया कि फिर वो तबई बन जाता है, तबई बन सकता है, लेकिन जब तक तबई नहीं बनता, लेकिन उसको यानी अपने नफ्स के ऊपर काबू हो गया, तो नफ्स के ऊपर काबू पाने का हुक्म है, तबई करने का हुक्म नहीं है। हाँ जी, यानी हदीस शरीफ में क्या है, हदीस शरीफ में है कि जिसने नफ्स को काबू किया और आखिरत के लिए काम किया वो दाना है, वो अकलमंद है। ये नहीं कि उसका नफ्स तभी हो गया, ये तो कहीं पर नहीं बात है। और ये जो आता है कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दसा, यकीनन कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को रज़ाइल से पाक कर दिया। तो यहाँ नतीजे पर भी बात है, यहाँ प्रोसीजर पर बात है। हदीस शरीफ में प्रोसीजर पर बात है और कुरान पाक में नतीजे पर बात है, तो बातें दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। तो इस वजह से जो तबी वाली बात है अगर ना भी हो, लेकिन अकली तौर पर इतनी इस्टेब्लिशमेंट हो चुकी हो कि नफ्स को काबू कर सकता हो और उसको मतलब जो है ना वो गलत तरफ नहीं जाने देता हो, तो जाहिर है उसको मुसलसल अजर मिलेगा, मुसलसल अजर मिलेगा। तो इस वजह से मतलब यह है कि जिसका तबी नहीं भी है लेकिन अकली तौर पर वो काबू कर चुका है, सुभान अल्लाह, वो भी काबिल रश्क है। असल बात तो नफ्स की बात न मानना है, नफ्स की बात न मानने से माशाल्लाह मकसद हल हो जाता है। यानी आदमी नफ्स की जो तकाजे हैं उनको दबा सके। हाँ जी, तो बाकी तफसीलात के वो तभी होता है नहीं होता ये अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि तभी बनना इसका गैर इख्तियारी है, लेकिन अकली तौर पर करना इख्तियारी है। वो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह जल्ला शानुहु ने सिर्फ वसअत के मुताबिक इंसान को मुकल्लफ किया है। तो जो जो वसअत में है, जो कर सकता है उसी का पूछा जाएगा, जो नहीं कर सकता उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अलबत्ता तबीयत इंसानिया बन जाता है एक वक़्त में, तो सहूलत भी हो जाती है। हाँ जी, तो ये वाली बात तो है। अस्सलाम वालेकुम हजरत। अच्छा, ये तो बहुत पुरानी है, पता नहीं क्यों आई है पुरानी। हाँ, 26 वाले डिलीट कर लिया, वो डिलीट किया था दूसरा। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी, इस्तेकामत न होने की वजह से बुरे माहौल में गुनाह हो जाते हैं, फिर तौबा करता हूँ, लेकिन अब तो मायूसी भी होने लगी है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, गुनाहों के असरात साफ मालूम होते हैं। आपके साथ अल्लाह ताला ने जो ताल्लुक़ नसीब फरमाया है उसकी बरकत से तौबा नसीब हो जाती है, लेकिन बहुत अफसोस होता है कि आपकी कदर नहीं हो रही मुझसे। मैं जानता हूँ कि बातें करने से कुछ नहीं होता, हिम्मत तो करनी पड़ेगी, अमल करने में इस्तेकामत के साथ। اللہ تعالیٰ سچی توبہ نصیب فرمائے، وہ جس کام کے کرنے سے راضی ہو وہ کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. مایوسی تو بہت خطرناک ہے، اگر مایوسی ہو گئی ہے تو واقعی قابل مذمت چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مایوسی کی کیا ضرورت ہے؟ انسان ہمت کرے، کوشش کرے، ہمت کرنے کا مکلف ہے. ہاں جی، جتنے مرتبہ بھی ناکامی ہو جائے اس پر توبہ کرے، اور مطلب یہ ہے کہ اس پر استقامت اختیار کرنے کا حکم ہے تو استقامت کر لے، اختیار کر لے، اور مطلب یہ ہے کہ اس کے مزید ارادے کرتے جائے. یہ مایوسی تو بے ہمت لوگوں کا کام ہے. مطلب جو آدمی کہتا ہے میں کچھ نہیں کرنا چاہتا تو اس کو مایوسی، دنیا میں کبھی مایوسی ہوئی ہے؟ ہاں جی، لگا بس مسلسل جو ہے لگا رہتا ہے جی، کوئی کہتا ہے جی یار تم سے نہیں ہوتا، کہتے یار چلو کوشش کرنے میں کیا رہ جائے. ہاں جی، تو وہاں پر مایوسی کیوں نہیں ہوتی؟ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اس چیز کی اہمیت کا احساس نہیں ہے، تو مایوسی بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہاں البتہ ہمت جمع رکھنا چاہیے، غلطی ہو جائے تو اس پر توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور توبہ کرنا چاہیے. ہاں جی، اور اس جس وجہ سے وہ گناہ ہوا ہے اس وجہ سے اس کا علاج بھی کرنا چاہیے. مطلب جس وجہ سے گناہ ہوتا ہے تو وہی اس کے علاج کی صورت بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے یا اس کا علاج بھی ہوگا، یعنی اس چیز کو ہٹائیں جس کی وجہ سے ایسا مسئلہ ہوا. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھائی غلطی جب ہوتی ہے تو حادثہ ہے، تو حادثہ کا نقصان جو ہے وہ تو ہو گیا، لیکن اگر آپ نے اسے ایکسپیرئنس گین کر لیا تو اس ایکسپیرئنس کا آپ کو فائدہ ہوا. تو اس ایکسپیرئنس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ ڈبل نقصان کرنا چاہتے ہو. ہاں جی، یعنی وہ اگر غلطی سے کام ہو گیا، غلط ہو گیا، تو اس ایکسپیرئنس سے فائدہ اٹھا کر آئندہ اس سے بچو. یہ طریقہ ہے. السلام علیکم میرا محترم مرشد، امید ہے کہ آپ خیریت سے. انشاءاللہ حضرت جی، آپ کی دعاؤں سے میں نے اپنے والد صاحب کو تمام رقم واپس کر دی، اللہ کا شکر ہے کہ میں اس میں الجھن سے آسانی سے نکل آیا. کل گزشتہ کسی شادی میں میری نظر کسی غیر پر پڑ گئی اور میرے دل میں پریشان الٹے سیدھے خیال آنے شروع ہو گئے تھے، ابھی بھی اس کا کچھ اثر ہے لیکن کم ہے. وہی بات یہ ہے کہ جس چیز کا سبب ہے اس سبب کو تلاش کر کے اگر وہ گناہ ہے تو اس کو، اس دروازے کو بند کرنا چاہیے. تو وہ دروازہ کون سا ہے؟ بد نظری کا دروازہ کون سا ہے؟ وہ نظر ہے. تو نظر کو نیچے رکھو، غض البصر کا قرآن پاک میں حکم ہے. تو نگاہ نیچے رکھو، اور مطلب یہ ہے کہ نظر کسی پہ نہ پڑے. جب نہیں پڑے گا تو پھر وسوسے بھی نہیں آئے گی، غلط باتیں بھی ذہن میں نہیں آئے گی. تو یہ ہے کہ کمزوری ہمارے اندر ہوتی ہے جس کی وجہ سے نقصان شروع ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے آئندہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو، اول تو ایسی جگہوں پہ جانا نہیں چاہیے جہاں پر مسائل ہوں. ہاں جی، ان کے جن کو ہو جان دل عزیز ان کے گلی میں جائے کیوں؟ ہاں جی، اپنے آپ کو بچانا چاہیے. لیکن اگر ایسی جگہ پہ چلے بھی تو نگاہ نیچے رکھے، اپنے آپ کو سنبھالے اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. السلام علیکم حضرت جی، میری آج کل یہ کیفیت ہے کہ مجھے ہر بات پر اپنے آپ پر بہت گناہگار لگتا ہے، پرانی باتیں میرے سامنے ایک دم آ جاتی اور میرا ضمیر مجھے کہتے ہے کہ یو ہو تم، یہ سارا کچھ تم نے کیا ہوا ہے، جس سے طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، بات بات پر رونا آتا ہے۔ کچھ دن پہلے میری کزن سے بات ہوئی، پھر مجھے کہہ رہے وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں آپ کی طرح بننا چاہتی ہوں، آپ کی طرح اللہ مجھے بھی اپنی محبت سے محبت نصیب فرما دے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ صحابیات کی طرح بننے کی کوشش کرو، اس کی دعا کرنا، میری طرح نہیں۔ پھر کہتے میرے تو آئیڈیل آپ ہیں، میں تو آپ کی طرح بننا چاہتی ہوں۔ پھر میرے سارے گناہ میرے سامنے آ گئے اور دل ڈر گیا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس لڑکی کو کیا پتہ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، دل میرا گندا ہے۔ کل سمندر کے کنارے بیٹھ کر یہ سوچ رہی تھی کہ کتنا بڑا یہ سمندر ہے، پھر اس کے اندر مخلوق کو اللہ پاک پال رہا ہے، اور اتنے بڑے رب کے ساتھ میں نے اتنا غلط کیا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہاں جا کے یہ جب سے میرا تعلق ہے اس کا، تو تب سے یہ کیفیت، حالانکہ میں صرف معاملات کا مطلب جو ہے وہ کرتا ہوں، وہ بھی مہینے کے آخر میں صرف ایک دفعہ۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کا شکر ہے اس ان کیفیات پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان توبہ کر لے تو توبہ کرنے سے سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، پھر اس کی طرف دھیان نہیں کرنا چاہیے، بار بار ان کو اپنے سامنے نہیں لانا چاہیے، کیونکہ اسے شیطان پھر جو ہے نا وہ اپنا کام لینے لگتا ہے۔ بس ایک دفعہ اچھی طرح توبہ کر کے پھر اس کو بھول جانا چاہیے، ہاں دوبارہ سر نہیں کرنا چاہیے، وہ توبہ کی لوازمات میں سے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو لے کے بیٹھ جانا اور اسی کو رونا دھونا، یہ ہمیں کوئی اس کے اوپر اس کے لیے تھوڑے آئے ہیں۔ حضرت تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے مطلب اپنے گناہوں کو یاد کرنے کے لیے تھوڑے پیدا ہوئے ہیں، آج بس گناہ اگر ہوئے تو فوراً توبہ کر لے، توبہ کر کے بس اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب اس کو رونا دھونے کے لیے ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، ہاں یہ کہ توبہ میں جلدی کرنی چاہیے اور پھر توبہ پہ قائم رہنا چاہیے، یہ ہمارا کام ہے۔ باقی یہ کہ گزشتہ گناہوں کو مطلب قصدن یاد کر کر کے پھر دوبارہ، یہ بھی ایک حجاب بن جاتا ہے، لہذا ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، جب میں تفسیر کی ٹائپنگ کرتی ہوں تو اکثر میرے ذہن میں کوئی خیال آ جاتا ہے، اور اس وقت آپ کی ایسی آیت کی ٹائپنگ آ جاتی جو میرے سوچ کا جواب ہوتا ہے، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ذہن میں کام کے نہ کرنے کی سوچ آئی، بس اس وقت سورۃ البقرہ کی آیت 216 کی ٹائپنگ آ گئی، مجھے ایسا لگا کہ اللہ میرے ساتھ کلام کر رہا ہے، اس میں اشارہ جہاد کی طرف ہے، مگر مجھے لگا کہ یہ میرے سوچ کا بھی جواب ہے۔ شاہ صاحب، کیا میرا خیال صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ تو جو کرنا چاہے تو کرتا ہے۔ ہمارے ساتھی اکثر حیران ہوتے ہیں کہ جو مضمون مکتوبہ شریف میں چل رہا ہوتا ہے وہی مضمون مثنوی شریف میں بھی آ رہا ہے، وہی ابقات میں بھی آ رہا ہے، وہیں پر کسی اور جگہ بھی آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک گوئے کہ ساری چیزوں کو ایک ترتیب کے ساتھ لا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ایک چیز کتنے زمانے پہلے لکھی گئی ہے اور اس کو پڑھانے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے، لیکن عین اس وقت آپ ادھر پہنچے جہاں پر وہ چیز آنی ہوتی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے، جتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا موت ادھر لکھا ہوتا ہے، تو ادھر لکھا ہوتا ہے تو کیسے مطلب یہ کون کہاں سے چلتا ہے اور کس طرح چلتا ہے اور پھر ادھر پہنچتا ہے، اور ہاں جی اور دوسرے کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے ساری چیزیں آسان ہیں۔ لگے यू ग्रीन कनेक्टेड है।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت والا آپ کی خدمت اقدس میں کچھ سوالات عرض ہیں رہنمائی کے لیے. ان شاء اللہ تعالیٰ حضرت والا ہی کی دعا کی برکت سے مکاتیب شریفہ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھنے کی توفیق و سعادت رہی ہے اور ہو رہی ہے. چونکہ خانقاہ سراجیہ کندیہ سے جو ہے چھپی ہے, اور حضرت خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ القدونس کی تقریر بھی فرمائی ہے, تو اس میں فصل ششم میں ملفوظات شریفہ کو جمع کیا گیا ہے حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کے, تو اس میں کچھ باتیں جو ہے سمجھ میں نہیں آئیں, بالخصوص اس وجہ سے کیونکہ حضرت والا آپ نے جو تشریح ہمیں اور تعلیم مبارکہ اور علوم عطا فرمائے ہیں مجدد افسانی شیخ احمد سرہندی نور العلوم القدہ کے مکتوبات سے اور ان کے دروس و بالخصوص حقیقت جذب السلوک 287 مکتوب کی جامع تشریح کی روشنی میں, تو ان علوم اور ان ملفوظات میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے, جو کہ وہاں بنیادی بات فرمائی گئی کہ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ مجاہدہ نہیں ہے نقشبندی سلسلے میں, جو کہ آج کل مشائخ سے ہم اور کافی عرصے سے سنتے آئے تھے, لیکن ہمیں حضرت والا کی برکت سے معلوم ہوا کہ سلوک طے کرنا ہے, لازم ہے, 10 مقامات ہیں اور اسی پر مجاہدہ کیا جاتا ہے انعکاسی فیض حاصل کرنے کے بعد, جذب قصبی حاصل کرنے کے بعد, اور بظاہر ان ملفوظات شاہ غلام علی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ کے ملفوظ جو اس میں نقل کیا گیا ہے, ان کا بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مجاہدہ نہیں تھا. وہ ان کے ملفوظات کے تصاویر کتاب سے اقتباس کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کیا ہے یہاں پر, تو امید ہے کہ حضرت والا اس کو بغیر دقت کے کھول پائیں گے اور اس کو دیکھ پائیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر کوئی دشواری ہو تو معذرت چاہتا ہوں, اس کو پھر سے بھیجنے کی یا پڑھنے کی کوشش کر سکتا ہوں اگر حضرت والا مناسب سمجھیں. تو دو جگہ فرمایا ہے کہ ایک امتیازی نقشبندیہ امتیازات نقشبندیہ, فرمایا کہ اس طریقے نقشبندیہ مجاہدہ نہیں ہے, تو ایک تو وہ, اور پھر ایک جگہ فرمایا طریق نقشبندیہ کا انتخاب, فرمایا کہ ہمارے فرمایا کہ حضرت جان جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا ہے کہ آپ نے یہ طریق نقشبندیہ مجددیہ کیوں اختیار کیا, تو انہوں نے فرمایا کہ اس طریقے میں اتنے زیادہ ریاضات و مجاہدہ نہیں ہے, اور میں نازک مزاج تھا, مجھ سے اور طریقوں کی مجاہدات نہ ہو سکتے تھے. تو یہ باتیں تو مجاہدے کے متعلق ہو گئی کہ نقشبندی سے مجاہدہ نہیں ہے ان اقوال کے مطابق, اور پھر اسی چیپٹر میں اسی فصل ششم میں فرماتے ہیں ہیڈنگ انوار ریاضات و نسبت باطن کے متعلق, فرمایا کہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں یعنی شاہ غلام علی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, لیکن اس سے پہلے شاہ جہاں آباد دہ یعنی کہ دہلی کی مسجد کے جامع مسجد کے حوض کا کڑوا پانی پی کر کلام مجید کے 10 پارے پڑھتا تھا اور 10,000 مرتبہ نفیس بات کرتا تھا. تو یہ تو مجاہدہ اور ریاضات کے متعلق آ گیا, اور پھر مزید مجاہدہ کے متعلق جس کی ہیڈنگ مجاہدہ ہے اس ملفوظ کی شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, فرمایا کہ جس وقت ہم مجاہدہ میں مشغول تھے 25 برس تک اپنے آپ کو ایک حجرے میں بند رکھا تھا, نہ سردیوں میں باہر آتا نہ گرمیوں میں. حضرت رہنما فرماتے ہیں کرم ہوگا بے سلیقے مندی کی معذرت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. بہت اہم بات ہے, اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت اہتمام کے ساتھ شروع کرنا چاہیے. اصل میں طرز مجاہدے کا مختلف ہے, مجاہدہ ضرور ہے, طرز مجاہدے کا مختلف ہے, اور ظاہر ہر ایک سلسلے کا اپنا اپنا رنگ تو ہوتا ہے. اس میں کون سے مطلب کس کی وہ بات ہے, क्यों कहते हैं कि सबके एक रंग है, सबके एक रंग नहीं है। कादरिया का अलग रंग है, नक्शबंदिया का अलग रंग है, चिश्तिया का अलग रंग है, सुरवर्दिया का अलग रंग है। तो नक्शबंदियों का हजरा नक्शबंदी हजरात का जो रंग है वो मुजाहिदा इस्तकामत के मानों में लेते हैं। मुजाहिदा जो है वो इस्तकामत के मानों में लेते हैं, मतलब ये कि जम के रहना। बल्कि आप हैरान होंगे कि मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह फरमाते हमारा तरीक जो है इसमें अजीमत है। तो अजीमत किसको कहते हैं? मैं रुख्सत को नहीं मानते। तो अजीमत क्या चीज़ होती है? अजीमत न मतलब मुश्किल चीज़ को इख्तियार करना अजीमत है। रुख्सत वाली पहलू को नहीं इख्तियार करते। और हजरत किसी को खड़ा नहीं रहने देते हैं, बल्कि फरमाते भाई ये जो है ना मतलब छिलके वगैरह पे वो ना करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मुसलसल जो है ना मतलब ये उनका होता। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, आप अच्छी तरह से हदीस शरीफ को याद रखें कि एक वक्त ऐसा आएगा जब सुन्नत पे अमल करना ऐसा होगा कि जैसे कोई अंगारे को अपने हाथ में रख के ले जा रहा हो, या कोई कंबल जैसा कांटों वाली चीज़ पर डाल के फिर उसको खींच रहा हो, मतलब इस तरह। अब बताओ अगर उस वक्त ऐसे ज़माने में कोई सुन्नत पर इस्तेकामत कर ले तो मुजाहिदा नहीं होगा? उससे बड़ा मुजाहिदा क्या है? वल्लज़ीन जाहदु फीना में मतलब क्या है? जो मुझ तक पहुंचने में मुशक्कत उठाएगा, जो मुझ तक पहुंचने में मुशक्कत उठाएगा। फर्क सिर्फ यह कि अख्तियारी मुजाहिदात, गैर अख्तियारी मुजाहिदात, शरी मुजाहिदात थी थी किस में। तो लिहाजा अगर कोई शरी मुजाहिदा करता है तो वो भी मुजाहिदा है, और कोई अगर इख्तियारी मुजाहिदा करता है वो भी करता है, कोई जो गैर इख्तियारी मुजाहिदा होता है वो भी मुजाहिदा है। इस वजह से मतलब यह एक मुजाहिदे से इनकार नहीं, इस वजह से इस पर सब तदबीक हो जाते हैं। अलबत्त उर्फी मुजाहिदा जिसको लोग मुजाहिदा कहते हैं वह अक्सर उसको कहते हैं जो आमाल पे इस्तेकामत वाली नहीं बल्कि इससे एक्स्ट्रा किस्म की चीज़ हो, उसको अमूमन लोग मुजाहिदा कहते हैं। तो नक्शबंदिया के यहाँ वो चीज़ नहीं है। तो ठीक है, सही है, मतलब मुजाहिदा की सूरत बदल गई ना, मुजाहिदा तो है। मुझे आप बताओ जो 10 मुकामात बता रहे हैं हजरत, या तो इसको उस मकतूब शरीफ से निकालो, हाँ जी, और अगर वो मकतूब शरीफ में मौजूद हैं, 10 मुकामात कौन से हैं? मुकाम तोबा, मुकाम इनाबत, मुकाम रियाजत, मुकाम किनात, मुकाम तकवा, मुकाम सबर, मुकाम जुहद। क्या चीज इसमें मुजाहिदे नहीं है? क्या जुहद में मुजाहिदा नहीं होता? क्या सबर में मुजाहिदा नहीं होता? क्या मुकाम रियाजत में मुजाहिदा नहीं होता? अब जरा अब बात आपस में मिला के देखें। सबसे पहली बात कि हजरत फरमाते इन मुकामात के बगैर कोई शख्स कामिल नहीं हो सकता। ठीक है, कमी बेशी इसमें होगी, किसी के लिए एक मुकाम में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी, किसी के दूसरे में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी, लेकिन मुकामात सबको पूरे के पूरे तो ये करने चाहिए, ये हजरत ने फरमाया। अब जब ये वाली बात समझ में आ गई तो ये तो अब इन मुकामात की अपनी हैसियत को देखो। इन मुकामात में सब मुकामात के अंदर मुजाहिदा है, अपने अपने रंग का मुजाहिदा है। जोहद में अपने रंग का मुजाहिदा है, सबर में अपने रंग का मुजाहिदा है, रियाजत में अपने रंग का मुजाहिदा है, किनात में अपने रंग का मुजाहिदा है, तवक्कुल में अपने रंग का मुजाहिदा है, हाँ जी, तस्लीम में अपने रंग का मुजाहिदा है। ये तो सारे मुजाहिदा थी। हाँ, अलबत्त ये अलग बात है कि मतलब यह है कि जो दूसरे हजरात करते हैं वो यूँ करते हैं, अच्छी तरह इस बात को समझे, तो यूं करते हैं कि पहले से प्रिपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक पत्थर को लुढ़काना चाहते हैं तो उस वक्त आप उसको नहीं लुढ़का सकते, पहले उसके लिए रास्ते बनाते हैं, नीचे कुरिजते 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 हाँ जी, ताकि उसका बेस बिल्कुल कट जाए, उसके बाद आप उसको धक्का देकर जो है ना मतलब आप, तो ये तो मैनेजमेंट है, ये तो मैनेजमेंट है। तो इस मैनेजमेंट से कोई इनकार कर सकता है? तो इस तरह जो मुबाहात से रुकना है ये मैनेजमेंट है। کیونکہ مباحات سے رکنا جو ہے یہ اس میں انہماک سے بچنا، یہ معصیت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو لایعنی باتوں سے بچایا اس نے اپنے ایمان کو علیہ السلام کو کامل کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ کو مجاہدہ تو کرنا ہے. والذین جاہدوا فینا سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، البتہ مجاہدے کا رنگ اپنا اپنا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ان حضرات نے جو کہا کہ ہمارے ہاں مجاہدہ نہیں، تو اس کا مطلب عرفی مجاہدہ نہیں، یہ مطلب نہیں کہ مجاہدہ ہے ہی نہیں، کیوں خود اس میں موجود ہے. جو مجاہدہ کر رہے تھے 25 سال، یہ کیا فرمایا نہیں؟ تو سارے مطلب اس کو استقامت کہا نا، انہوں نے اس کو استقامت کہا، مجاہدہ نہیں کہا. مطلب یہ کہ 25 سال تک ایک جگہ پہ رہنا استقامت کے ساتھ، ہم اس کو مجاہدہ کہتے ہیں، انہوں نے استقامت سمجھا. بس ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے، بات تو ایک ہی ہے. تو اس وجہ سے یہی ایک بات بھی ضرور ہے، میں آپ کو صاف بتا دوں، نقشبندی حضرات جو درمیان میں بگڑ گئے وہ یہ کہ نقشبندی کی ساری چیزیں اندر اندر ہیں، ظاہر کچھ نہیں ہے. لہذا جو مخلصین ہیں ان کا اخلاص بڑھ جاتا ہے، جو مخلصین ہیں ان کے لیے اخلاص کا موقع زیادہ ہے، کیونکہ وہ ظاہر مطلب ہے کہ وہ کوئی چیز باہر نہیں ہے نا، تو اخلاص بڑھ جائے گا. لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مخلص نہیں ہے تو اس کی جو غلطیاں وہ چپ ہی رہیں گی، اس کی اصلاح نہیں ہو سکے گی. باقی لوگ کی اصلاح ہو جائے گی، باقی لوگ تو لوگ بھی اصلاح کر لیں گے کہ آپ میں یہ مسئلہ ہے، آپ میں یہ مسئلہ ہے، تو باقی لوگ کی تو اصلاح لوگ بھی کر لیں گے. لیکن نقشبندیوں کی اصلاح لوگ کیسے کریں گے؟ وہ کہیں گے ہم تو اس طرح کرتے ہیں، ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں، ہم تو دل ہی دل میں سارا کچھ کرتے ہیں. تو ہم آؤٹ پٹ کو دیکھیں گے، صحیح بات کرتا ہوں، ہم آؤٹ پٹ کو دیکھیں گے. آؤٹ پٹ کیا ہے؟ شریعت پر چلنا. آؤٹ پٹ کیا ہے؟ شریعت پر چلنا. اب اگر عرفی مجاہدے کے ذریعے سے کوئی شریعت پر چل پڑا تو ہم کہیں گے تو بہت ٹھیک کر رہا ہے. اور اگر استقامت کہ اس میں جو ہے نا، مطلب اگر کوئی شریعت پر چلنے لگا تو ہم کہتے تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے. اگر عرفی مجاہدہ کا دعویٰ کر کے کوئی غلط راستے پہ چل پڑے، جوگی بن گیا، تو ہم کہیں گے تو غلط ہے. چاہے وہ چشتی ہو، چاہے قادری ہو، چاہے سروردی ہو، ہم کسی کا سائڈ تو نہیں لے سکتے. کوئی بھی ہو، اگر وہ عرفی مجاہدہ کر کے اپنے آپ کو پاک باز ڈکلیئر کر کے شریعت پر نہیں چل رہا تو ہم کہیں تو غلط کر رہے ہیں. اور کوئی نقشبندی بن کر، استقامت کا دعوے دار بن کر اندر ہی اندر گڑبڑ کر رہا ہے اور شریعت پر نہیں چل رہا، اسے شریعت کے خلاف فرض ہو رہی، تو ہم کہیں تو صحیح نہیں ہے. اب ہم جو کہتے ہیں وہ یہ بات ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اصل تک پہنچو، اور اصل کیا ہے؟ شریعت پر چلنا ہے. شریعت کے جتنے بھی، میں حیران ہوں جب حضرت مجھے سفر باتیں، استقامت نمبر ایک اور پھر عظیمت نمبر دو. اب مجھے خواتین کے ساتھ علیحدگی میں ملنا، میں عظیمت کون سی ہے؟ ملنا یا نہیں ملنا؟ ہاں جی، نہ ملنا، بے شک ضرورت بھی ہو لیکن نہ ملنا عظیمت یہی ہے، کیونکہ رخصت خود مانتے نہیں ہیں. ہاں جی، اگر کوئی اور غلطی کر لے تو ہم ان کو کہیں گے بھائی یہ تو رخصت ماننے والے ہیں، چلو جی ان سے غلطی ہو گئی. جو عظیمت کا دعویٰ کرتے ہیں پھر وہ کیسی غلطی کرتے ہیں؟ وہ کیوں اس طرح کرتے؟ تو قابل معافی نہیں ہے اس طریقے سے مالی معاملات میں جو گڑبڑ کرتے ہیں، اور معاملات میں صحیح مطلب وہ ساری چیزیں نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے مالوں پہ نظر رکھتے ہیں، ان سے مال کھینچتے ہیں. ہم کہتے ہیں تمہارا وہ استقامت کدھر گیا؟ ہم ان کی بات کیسے مانیں؟ بھائی نتیجے کو دیکھو، نتیجے کو دیکھو. اگر نتیجہ اس کا صحیح ہے ہم کہیں بسر و چشم، بے شک آپ نے کچھ بھی مجاہدہ نہیں کیا. ہم آپ سے مجاہدہ تو نہیں چاہتے، ہم آپ سے شریعت پر چلنا چاہتے. اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہی کہ شریعت پر چلو. مجاہدہ ذریعہ ہے، مقصود نہیں ہے. مجاہدہ ذریعہ ہے، مقصود نہیں. ہم اس کو مقصود نہیں مانتے. جب مقصود نہیں مانتے تو بات ہی ختم ہو گئی، اصل بات ہو. باقی تو طریقہ کار کا فرق ہے. اگر کوئی شخص سنت پر ڈٹ جائے، کہتے ہیں میں نے سنت کے علاوہ کسی اور کام کو نہیں کرنا، تو یہ بھی تو مجاہدہ ہے نا. उसके लिए जितनी भी रुकावटें, उन रुकावटों को बर्दाश्त कर रहे तो बस ठीक है, सुभान अल्लाह। लेकिन एक बात याद रखो, सुन्नत सिर्फ पगड़ी पहनने को नहीं कहते, सुन्नत सिर्फ दाढ़ी रखने को नहीं कहते, सुन्नत सिर्फ लिबास के अहतमाम करने को नहीं कहते, सुन्नत में पूरा दिन आता है, सुन्नत में मामलात भी आते हैं, सुन्नत में मुआशरत भी आती है, सुन्नत में अखलाक भी आते हैं, सुन्नत में इबादत भी आते हैं। इन सारे कामों को ठीक करना होगा। अगर मैंने सिर्फ चंद जाहिरी सुन्नतों को इख्तियार कर लिया और बातिनी सुन्नतों को छोड़ दिया तो ये तो काम खराब हो गया। अब अगर इन इन पूरे सुन्नतों के ऊपर आने के लिए मुझे इख्तियारी मुजाहिदा करना पड़ा, ठीक, गैर इख्तियारी मुजाहिदे से ठीक हो गया, सुभान अल्लाह। मैं अगर मिसाल के तौर पर इस्तेकामत वाले मुजाहिदे पे ठीक हो गया, बिल्कुल सही, कोई मसला नहीं, क्योंकि जरिया ना मकसूद तो नहीं है। इस वजह से इसमें हम हजरत की इन बातों का तावील इस तरह करेंगे, हम कहेंगे हजरत इस्तेकामत वाले मुजाहिदे को मुजाहिदे कह रहे हैं और बाकी उर्फी मुजाहिदे को मुजाहिदे नहीं कह रहे। लिहाजा अगर वो फरमाते हैं कि हमारे तरीक में मुजाहिदा नहीं है तो सिर्फ उर्फी मुजाहिदे से इनकार कर रहे हैं, असल मुजाहिदे से इनकार नहीं कर रहे। दीन बगैर मुजाहिदे के है ही नहीं, दीन बगैर मुजाहिदे के है ही नहीं। आप हजरात जानते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि ये जो हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, गाड़ी चलती फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन को हटा दो ना गाड़ी चल सकती है। तो इस तरह दीन मुजाहिदे के बगैर है ही नहीं, तो मुजाहिदे के साथ ही चलेगा। हाँ, मुजाहिदा कैसे है, कितना है, कौन सा है, इसके ऊपर बात है। तो कोई शरी मुजाहिदा होगा, कोई इख्तियारी मुजाहिदा होगा, कोई गैर इख्तियारी मुजाहिदा होगा, कोई इस्तेकामत वाला मुजाहिदा होगा। बहरहाल अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी बात है। तो लिहाजा हम किसी भी तरीके के खिलाफ नहीं है। इन हजरात ने इस तरीके से अगर बात की है, बिल्कुल सही है, उनके लिए यही जेबा है और वह बिल्कुल हक पर है, कोई इसमें मसला नहीं है। अलबत्ता दूसरे हजरात अगर उन नतायज को दूसरे तरीके से हासिल कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, बिल्कुल ठीक है। आखिर यही मिर्ज़ा मर्ज़ा जाना रहमतुल्लाह अलैह थे, यही शाह गुलाम अली साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, जब उनसे बैत के लिए गए तो क्या फरमाया था उनसे, पढ़ लेना इसी किताब में। जब बैत होने के लिए उन्हें कहा कि मेरे पास ना हो, यहाँ तो पत्थर के ऊपर नमक डाल के चाटना है, यानी मजा वजा कोई नहीं, पढ़ ले इस किताब में, मजा वगैरह कोई नहीं। तो जो बगैर मजा के, उन्होंने कहा हजरत मैं तैयार हूं, फरमाया फिर ठीक है आ जाओ। तो जो बगैर मजे की तरबियत के लिए तैयार हो, तो मुजाहिदा नहीं है। माशाल्लाह, मैं आप हजरात को पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि बाबा ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह वो गए थे मावरा नहर में, और वहां पर एक बुजुर्ग थे जो बात नहीं करते थे, सिर्फ उनको काना वक़्त पे लोग देते थे, नमाज पढ़ लेते थे, आराम कर लेते थे, और कोई गफ्तगू तो बस मुराकिब होते थे। और हजरत उनके साथ दो साल रहे, दो साल। जब दो साल ख़त्म हो गए तो उन्होंने आंखें खोली, ने कहा कि मुझे हुक्म है तुझसे बात करूं, बताओ तू किस लिए आया है। उसने कहा हजरत मैं तो आपसे, मुझे आप अपने फर्जंदी में ले लें। फरमाया तेरे किस्मत मेरे साथ नहीं लिखा हुआ इस मसले में, तुझे आगे जाना पड़ेगा, तुझे मिल जाएगा, तू आगे जा। और मसल्ले के नीचे से पैसे निकाल के उनका ये रास्ता, ये रेजगारी लो, ये रास्ते के पैसे ले लो और आगे जाओ। अब उन्हें पैसे जेब में डालने ही थे, सामने देखा तो हजरत नहीं, निका कमाल बात की, तो कौन सी बात की, गायब ही हो गए। चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए, बगदाद शरीफ पहुँच गए। ख्वाजा शाहबुद्दीन सुरवर्दी रहमतुल्लाह से मुलाकात हुई। ख्वाज साहब को देख कर दिल ने गवाही दी कि यही साहब है जिनको जिनके मुझे तलाश थी। और हजरत ने भी फरमाया कि बस ये मेरे हैं। बेहत हुए, 17 दिन के बाद खिलाफत दे दी, 17 दिन के बाद। अब वहाँ जो बरसों से ठहरे हुए थे तो उन्होंने दिल में कहा कि कमाल है, एक नौजवान आया और 17 दिन में सारा कुछ ले गया, और हम बरसों से इधर पड़े हुए, पता नहीं क्या बात है। तो हजरत पे इनकी बात मुनकशिफ हुई, फरमाए भाई ये तो बिल्कुल खुश्क मतलब जन वो जन लकड़ी थी आते ही अगले ली, तुम्हें तो जरा मेहनत करनी पड़ेगी, अभी तुम्हें खुश्क होना पड़ेगा, फिर उसके बाद खुश्क होना पड़ेगा मुजाहिदा, खुश्क होना पड़ेगा क्या है मुजाहिदा। वो मुजाहिदा 2 साल कर चुके थे, कौन सा मुजाहिदा कर, वहां क्या लकड़ी काटी थी, डेंट पहले थे, रातों को जागे थे। उनके लिए मुजाहिदा यही था एक ऐसे साहब के साथ रहे जो बात नहीं करते थे, यही उनके लिए मुजाहिदा था। अब मुझे बताओ ये मुजाहिदा कौन सी किताब में लिखा है, किसी किताब में लिखे तो मुजाहिदा ये है नहीं, अव्वल दिल से पूछो ये मुजाहिदा है या नहीं है। हजरत मौलाना अशरफ साहब रहमतुल्लाह खुद इरशाद फरमाते कि मैं हम गए मैं गया हजरत सुलेमान रहमतुल्लाह के पास, हजरत टेक लगाए हुए थे और किताब पढ़ रहे थे। तो मैं मेरे दिल में ख्याल आया अगर हजरत इस वक्त हमसे बात कर लेते तो हमें भी कुछ फायदा हो जाता, किताब तो बाद में भी पढ़ी जा सकती थी। तो फरमाया कि हजरत ने आंखें खोली, इन आंखें उठाई ऊपर, फरमाया लोग कहते हैं तकरीर कर, जबकि अकबर कहते हैं तकरीर न कर तासीर दिखा। लोग कहते हैं तकरीर कर, जबकि अकबर कहते हैं तकरीर न कर तासीर देगा। अब देखिए थोड़ी देर के लिए भी मौलाना अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह तंग हो गए ना खामोशी से, समझ में आई ना बात, तो मुजाहिद है या नहीं है, मुजाहिद है ना। तो ये मुजाहिद बाबा जकरिया मुल्तानी उम्र से 2 साल किया है, तो मुजाहिद की बड़ी किस्म है। अलबत्त तो कोई इसको मुजाहिदा कहेगा कोई नहीं कहेगा, वो अलग बात है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का फर्क है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का फर्क है। और अंडरस्टैंडिंग का फर्क सलासल में होता है कि कोई किस चीज को किस तरह लेता है, कोई किस गलत कोई भी नहीं होता, गलत कोई भी नहीं होता, लेकिन कोई कोई किस रंग में लेता है, कोई किस रंग में लेता है। हम तो सबके आशिक है, लिहाजा में तो कोई मसला नहीं, और जो किसी खास ग्रुप का आशिक है तो फिर ठीक है, उनको माजूर समझते हैं, हम कहते हैं उनको ये बातें कर सकते हैं। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे नजर आते हैं, हमें सब ठीक नजर आते हैं, हाँ अपनी अपनी बात है। काफी बात हो गई 18 मिनट इस पर। अच्छा सुभान अल्लाह, ये सवाल आ गया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। हजरत आपने फरमाया था कि जोड़ में शिरकत और रात खानकाह में गुजारना जरूरी है, अगर कोई नहीं आ सकता किसी वजह तो इतलाक कर दें, उसको मुतबादल मुजाहिदा बताया जाएगा। हजरत ईद से पहले जो हफ्ता आएगा और ईद के बाद जो हफ्ता होगा इस पर मैं नहीं हूँगा, इन हफ्तों में फिर क्या मामूलात कर लो। अब देखो मुजाहिदा मान लिया नहीं वाले, मुजाहिदा मान लिया ना वाले, देखिए यानी जोड़ में आकर अपने आप को इसका पाबंद करना कि जाना नहीं है तो मुजाहिदा ये नहीं है, तो बस ठीक है जी। अब ये ऐसा मुजाहिदा है जिसमें तालीम भी है, तरबियत भी है, मुजाहिदा भी है, मुशाहिदा भी है, अब सारी चीजें, तो अच्छी चीजें है नहीं है, तो जाहिर मतलब हर चीज का अपना अपना अंदाज होता है। हमारे सिलसिले का ही रंग है, हर सिलसिले का अपना अपना रंग होता है, तो हम इस तरीके से कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग अपने साथियों से तवक्कु करेंगे कि वो हमारे जो सिस्टम है मुजाहिदे का उसको समझ लें और इसके साथ अपने आप को एडजस्ट कर लें। अक्सर मुझे साथी कहा करते थे कि हजरत हमें कुछ मुजाहिदा बताएं, जब मैंने वो बाकी बहुत सारी तफसीलात मुजाहिदे की सुनाई ना, तो मुझे साथियों ने कहा कि हमें कुछ मुजाहिदा बताएं, मैंने कहा वक्त आने पे बताऊंगा, वक्त आने पे बताऊंगा। और साथ ये भी कहा था मुजाहिदा वो होता है जो शेख बताए, मुजाहिदा वो होता है जो शेख बताए, अपनी मर्जी से मुजाहिदा मुजाहिदा नहीं होता, वो एक्सरसाइज है, ठीक है ना। अपनी मर्जी से मुजाहिदा क्या है, वो मुजाहिदा नहीं होता, वो एक्सरसाइज है। अब पता चलेगा ना कौन कितना मुजाहिदात में कामयाब होता है, पता चलेगा ना, वक्त वक्त दिखाएगा। हाँ जी, तो असल बात यह है कि हम तो यही समझते हैं कि वक्त के साथ साथ ये सारी चीज़ें खुलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हर सिलसिले का अपना अपना रंग है और अल्लाह ताला के देने के अपने अपने अंदाज हैं, तो मतलब उनसे लेना चाहिए, इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। मेरा वजीफा 15 15 मिनट, कलब और रूह का 1 महीना मुकम्मल हो गया। दिल पर अल्हम्दुलिल्लाह हरकत होती है, जबकि रूह पर कम महसूस होती है। माशाल्लाह रूह पर भी बढ़ जाएगी, आप अगले पे चले जाएं। और वो ये है कि 15 मिनट की जगह 10 मिनट, 10 मिनट दिल पर, और चूंकि रूह पर कम है तो 15 मिनट रूह पर, और जो है ना मतलब 15 मिनट सिर पर। अभी जो है ना मतलब आप शुरू कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। हजरत, आजकल की टेक्नोलॉजी को दीन के लिए किस हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है? मसलन होलोग्राम टेक्नोलॉजी जो है, क्या इसको इस तरह इस्तेमाल करना कि दूसरे शहर में मर्द हजरात के मजलिस में शेख का दर्स हो, होलोग्राम के ज़रिए से सुना जाए, जो एक किस्म के शेख जो हैं वो लाइव इस मजलिस में मौजूद हो। इसी दूसरे शहरों में जो मजालिस हैं, इनमें लोगों को एक तरह के फिज़िकली शेख का सामने होना और बयान सुनने का और ज़्यादा असर हो सकता है। दूसरा, सोशल मीडिया में यूट्यूब आजकल इसका सबसे मजबूत टीम मीडियम है, क्या शेख की चीज़ों को ऑडियो की सूरत में यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया जा सकता? जैसे यूट्यूब पर एक सवाल जवाब का चैनल बन जाए और रोज़ाना एक सवाल जवाब अपलोड किया जाए, जिससे यूट्यूब पर लोगों को फ़ायदा हो इंशाल्लाह। मैं आपको क्या बताऊं, कहते हैं कि जो अमीर हबीबुल्ला साहब थे, अमीर हबीबुल्ला अफगानिस्तान के अमीर थे, उनके पास हमारे एक बुजुर्ग गए थे, खान साहब मशहूर थे, खान साहब से उनने किताब भी लिखी अरवाए सलासा। तो हजरत उनकी मजलिस में बैठे थे, तो उनको कुछ सवालात करने थे हजरत से, तो उन्हें नोट किए हुए थे, लिखे हुए थे और जेब में पड़े हुए थे कि मैं सवालात करूंगा। ये तो बगैर उसके पेश किए उन्होंने खुद ही बयान करना शुरू किया अमीर हबीबुल्लाह ने, कि लोग इस किस्म के सवालात मुझसे करना चाहते हैं, लेकिन उसका जवाब ये। तो इनमें से एक सवाल ये था कि जर्मनी वगैरह जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनमें आप अपने बच्चों को भेज दें और वो वहाँ से तालीम हासिल कर ले, फिर हमारे मुल्क में आकर वो इस तालीम को आम करें और एजुकेशन मतलब जो है ना वो मॉडर्न वो यहाँ लोगों को सिखाए। फरमाया इसमें एक ऐब है, ऐब ये कि बच्चों का जहन कच्चा होता है, वो उस माहौल में जाकर उन जैसे हो जाएंगे और फिर यहाँ आकर हमारे माहौल को ख़राब करेंगे। इसके बजाय बेहतर है कि वहाँ के प्रोफेसर को ऊंची तनख्वाह देकर अपने माहौलों में लें, अपनी यूनिवर्सिटियों में, और उनसे यही चीज़ें हासिल कर लें इसी माहौल में। तो मतलब यह है कि हम अपने माहौलों को तब्दील नहीं करेंगे और वो चीज़ें भी हासिल हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये यूट्यूब वाली जो बात है ना, यूट्यूब के साथ खतरात भी बहुत हैं, क्योंकि ये जो है ना यूट्यूब जो चीज़ है, ये इसके साथ बहुत इधर उधर की चीज़ें भी होती हैं। मैंने बल्कि अपने बाद साथियों से कहा भी कि आपने हमारे बयान कौन सी जगह पे रख दिया, तो ये गंद है साथ। तो उन्होंने कहा कि हम तो रह नहीं रखते, लेकिन क्या करें, जहां पर ये अच्छी चीजें होती हैं साथ ही बुरी चीजें रख देते हैं। हाँ जी, तो हमने तो नहीं रखे, तो बात सही है। तो ये चीजें महफूज नहीं है, ये जगह महफूज नहीं है। इसके बजाय ये कि आप अपने वेबसाइट पर रखें और इसके बारे में कोई तरीका इस तरह अख्तियार कर ले कि लोगों को इतला हो जाए कि इसका लिंक ये है, आप फला चीज फला जगह पे आप हासिल कर सकते, तो उससे भी वो मकसद हासिल हो जाएगा। तो अपना जो वेबसाइट हमने महफूज रखा हुआ है, मतलब उस पर कोई और चीज़ नहीं है, कोई मतलब उस पर एडवर्टीजमेंट या इस किस्म की चीज़ें नहीं, बल्कि मुझे बाद लोगों ने कहा भी कि आपके वेब बहुत अच्छा चल रहा है, तो अगर हम लोग ज़रा इस पर वो कर ले तो हम बहुत कुछ कमा सकते हैं। मैंने कहा हमने वेबसाइट कमाने के लिए नहीं रखा हुआ, हमने वेबसाइट तालीम के लिए रखा हुआ है, तो तालीम इससे हो रही है। हाँ जी, हमने इस पर क्या कमाना है? हाँ जी, तो मकसद ये है कि ये जो बात है ज़रा महफूज तरीके से हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी जो होलोग्राम वाली कंसेप्ट है, तो असल बात यह है कि उसमें ज़रा फतवा वाली बात रहेगी। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि जो ऑडियो और वीडियो वाली बात है तो उसमें ऑडियो मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वीडियो में मसाइल होते हैं। हाँ जी, तो उनसे अपने आप को बचाना चाहिए। हाँ, अलबत्ता होलोग्राम में इस तरह होता है कि वो जैसे लाइव सिस्टम हो तो उसकी गुंजाइश तो होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर किसी को अपने शेख के साथ मोहब्बत हो जाए तो उसकी आवाज़ भी उसके लिए काफ़ी होती है। वो ज़रूरी नहीं कि उसका तस्वीर देखे। हाँ जी, वो आवाज़ भी काफ़ी है, किताब भी काफ़ी है, वो मतलब असल चीज़ उसको मिल जाती है। हाँ, अलबत्त एक बात मैं अर्ज़ करता हूँ जिसका मैं ख्वाहिशमंद भी हूँ, वो ये कि जो वीडियो से इस तरह बन जाए कि वो तस्वीर वाली वीडियो ना हो बल्कि डॉक्यूमेंट्री वाला हो। जैसे डॉक्यूमेंट्री हो कि बाकायदा जैसे पावर पॉइंट हो, उसके ऊपर चीज़ें हों, वो तब्दील हो रही हो, साथ साथ बयान किया जाओ, तो उससे मुसलसल आदमी का आंखें, कान, दिमाग सब एक लाइन पे सोच रहे होते हैं, एक लाइन पे काम कर रहे होते हैं, वो बड़ा इफिशियंट है। बजाय इसके कि हम लोग और तरीक़ों का इस्तेमाल कर लें, तो हम लोग ये तरीका क्यों नहीं इस्तेमाल कर लें, डॉक्यूमेंट्री वाला तरीका इस्तेमाल क्यों ना करें। तो मैं तो इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, इस फ़ामुल फ़लकियात का जो कोर्स है वो हमने इस तरीके से कराया, किस किस्म के वीडियोज़ बना लिए, उसके ज़रिए से वो माशाल्लाह वो सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन उसी तरीके से चलती हैं, और उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। तो इस तरीके से माशाल्लाह ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बाकी ज़ारे अच्छी अच्छी चीज़ें और आएंगी इंशाल्लाह, वक़्त पर उनको इस्तेमाल किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम हज़रत जी, मुझे मराकब तंज़ीह व सिफ़ात सलबिया तालीम फरमाया गया आपने जिसका एक माह मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला के पाक होने का यकीन पुख्ता हुआ है, अल्लाह पाक के वराल वरा होने का तसव्वुर इस तरह समझ में आता है कि वो किसी का मोहताज नहीं और मैं सराप मोहताज हूँ। नमाज में सूरह इख़लास को इस मराकबा की तरह महसूस किया है, जो अक्सर ज़ुबानी तौर पर पढ़ता था, मगर अब कुछ दिनों से इस्तेमाल के मराकबा सूरह इख़लास का मफहूम पेश करता है। मजीद हजरत जी, कि अपने अंदर किबर का कोई कवि गुमान है और वो जाहिर भी हुआ है, इस तरह कि मेरी सास मोहतरमा मेरे गई और मैं जब घर में दाखिल हुआ तो उनको मिलने के लिए तो उनने चारपाई पर बैठे बैठे हाथ बढ़ा दिया, जिसकी वजह से दिल ने अपनी बेइज्जती महसूस की। कुछ दिन पहले मेरे साली का रिश्ता तय हुआ, जिस पर मुझसे मशवर न लेने पर भी दिल को रंज हुआ। इन वाक़ात से मुझे लग रहा है कि मैं खुद को बहुत कुछ समझता हूँ और ये मेरे अंदर किबर की वजह से है। माशाल्लाह, अच्छी बात है, किसी बुराई का इदराक होना ये तो माशाल्लाह बड़ी गनीमत है। अल्लाह ताला इसको मज़ीद बढ़ाए, और फिर उस चीज़ को दूर करने के लिए जो जिस हिम्मत की ज़रूरत है उसको भी अल्लाह ताला नसीब फरमा दे, क्योंकि किबर तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, तो इससे तो बचना बहुत ज़रूरी है। तो उसका यह है कि ख्याल का इलाज ख्याल है, तो आदमी समझे कि मेरी क्या हैसियत है। अगर अल्लाह पाक ने कोई हैसियत दी है तो मैं इसको लोगों को जताकर अल्लाह पाक की नाशुक्री क्यों करूं, बल्कि मुझे शुक्र करना चाहिए और अपने आप को कुछ नहीं समझना चाहिए। अलबत्ता ये वाली बात है कि हम लोग बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज होती है, टिकेट्स होते हैं या उनके अपने स्टाइल्स होते हैं, तो हम हर चीज़ से हर चीज़ में अपने स्टाइल पर लोगों को देखना चाहते हैं। ये ज़रा गलती होती है, इस गलती की इस्लाह होनी चाहिए। हमारे हजरत फरमाते थे सही तस्लिम हक साहब रहमतुल्लाह अलैह कि हम औरतों से वो तवक्को रखते हैं जो तरबियत याफ्ता ख्वातीन से रखनी चाहिए, वो तरबियत के मौके नहीं देते, तो इस हालत में औरतों पर जुल्म हो जाता है। बात पे जरा गौर करें, यानी औरतों की तरबियत हुई नहीं और हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऐसे बिहेव कर ले जैसे उनकी तरबियत हो चुकी है, तो ये जुल्म है या नहीं है? हाँ जी, तो हमें उनको लेटिट्यूड देना चाहिए ना, कि मतलब अगर उनकी तरबियत नहीं हुई है तो फिर उनको हम वैसे ही कंसिडर करना चाहिए ना। मिसाल के तौर तो पर आदमी अपने आप को समझे कि मेरी तरबियत अगर ना हुई तो फिर मैं क्या करूँगा। हाँ जी, तो इस वजह से ऐसी चीज़ों को महसूस करते हुए इन चीज़ों को भी जहन में रखना चाहिए। हजरत जी, शारह मारिफत में मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात में कुछ बातें समझ नहीं आई, अगर जवाब की ज़रूरत हो तो इनायत फरमा दे। सवाल, एक जगह जहाद कालिब बदन अंसर का लफज था, इससे क्या मुराद है? यानी बदन अंसरी मुराद है जिसमें तमाम अनासर मौजूद हो। आप बाद पहले उसको अनासर कहते थे, अब इसको तबीयत क्या कहा जाता है, तो इन चीज़ों का जो है ना मतलब उससे, तो ये बात है कि यानी जहाद बिन नफ्स जिसको हम कहते हैं वो मतलब ये से मुराद है। क्या ये जबिल्लत की तरफ इशारा है? मतलब ये है कि जबिल्लत इससे थोड़ा कि अगर मतन कि मतन में कि ये जहाद दायमी तौर पर बरपा है, नफ्स का इत्मीनान जहाद से तस्कीन नहीं करता और इत्मीनान कल्ब इस जहाद को ख़त्म नहीं करता। इस जात की बका में बहुत फ़ायदे हैं क्योंकि कालिब की तनकीह और तदहीर में काम आते हैं, ताकि इस जान के कमालत और आखरत के मामलात बसालत बरास उसके साथ वाबस्त हों। और आगे की बात भी समझ में नहीं आई। असल में कालिब बनता है ज़र्फ़, और मैंने पहले बात किया कि ज़र्फ़ जो है जबिल्लत है और नफ्स इसमें मजरूफ़ है, नफ्स इसमें मजरूफ़ है। मिसाल के तौर पर बर्तन में गंद है और वो गंद काला है, उसको मैं हटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ साबुन से, पानी से, ये हटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ, हत्ता कि वो बेस निकल आता है, वो जिस के ऊपर वो स्केल लगा हुआ है वो बेस निकल आता है। अब मैं मज़ीद हटा सकता हूँ? अब मैं मज़ीद नहीं हटा सकता, क्यों? वो जो है ना वो ज़र्फ़ है, मज़रूफ़ नहीं है। मैं मज़रूफ़ को हटा सकता हूँ, ज़र्फ़ को तो नहीं हटा सकता, तो लिहाजा मैं नफ्स की इस्लाह कर सकता हूँ, ज़र्फ़ की नहीं, क़ालिब की नहीं। क़ालिब के अंदर जो कम्बिनेशन अल्लाह ने रखा है आतश आब और बाद और खाक की, वो कम्बिनेशन तो उसमें होगी। जैसे पंजाबी पंजाबी रहता है, पठान पठान रहता है, अरब अरब रहता है, अजम अजम रहता है तरबियत के बाद भी, तो पठान की पठानियत ख़त्म तो नहीं हुई। अब अगर वो शरीयत के साथ टकरा रही है तो मुस्तकिल तौर पर उसके लिए मुजाहिद है, और पंजाब की पंजाबियत अगर शरीयत के साथ टकरा रही है तो उसके लिए मुस्तकिल तौर पर वो मुजाहिद है, और अगर अरब की अरबियत शरीयत के साथ टकरा रही है तो उसके लिए वो मुजाहिद है, और अजम की अजमियत अगर उसके साथ टकरा रही है तो उसके लिए वो मुजाहिद है। तो वो मुजाहिदा जो जबिल्लत के तहत है वो मुस्तकिल रहेगा, उसमें तब्दीली नहीं आएगी, अलबत्ता इसका अजर भी मुस्तकिल होगा। और आगे की बात भी समझ नहीं आई, चूंकि इस दुनिया के कमालात में कालिब ताबे है और कल्ब मतबू है, और आखिरत में मामला इसके बरक्स, यानी कालिब ताबे होगा और कालिब मतबू, वो जब इस दुनिया का निज़ाम तरम पर जो वो जहाँ पर तो पर तो डाला जाएगा, वो तो ये जात भी तमाम हो जाएगा और ये किताल अंजाम को पहुँच जाएगा, और जब अल्लाह जब के फजल से सब नफ्स इत्मीनान के मुकाम में आएगा और मिलाए के फरमा तो इस्लाम हकीकी मैसर हो गया। ठीक है जी, मतलब ये है कि यानी यूँ कह सकते हैं कि अगर कालिब की कोई बात, कोई तकाजा कल्ब सलीम के ख़िलाफ़ है तो उसको नहीं मानना पड़ेगा, तो ताबे हो गया या नहीं हुआ? अगर कल्ब सलीम अगर उसके ख़िलाफ़ हो गया तो कालिब को मनवाना पड़ेगा, तो ताबे हो गया ना। हाँ जी, और दूसरी तरफ यह है कि वहाँ पर जिस वक़्त मतलब यह है कि नफ्स को जब इत्मीनान हासिल हो गया, नफ्स को जब इत्मीनान हासिल हो गया तो फिर ज़ाहिर मतलब ये कि ये बात ख़त्म हो जाएगी, फिर इसके बाद यानी वो सारे के सारे निज़ाम फरमाबरदारी में आ गया। हजरत जिसका सवाल था, जिसका जवाब अभी दिया गया, जो मुजाहदे के बारे में था, उनकी तरफ से आया है। सुभान अल्लाह, हजरत वाला इज एक्सप्लेन इट सिंपली एंड ब्यूटिफुली बाय वे ऑफ इस्तिलाहात यूसेज इन उर्फी लैंग्वेज एंड खसूसी मुजाहदा। ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ मुजाहदा एंड इट्स अकसाम वॉज वेरी बेनिफिशियल। द मुजाहदा ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम मोहब्बत इज़ वेरी डीप एंड अमेजिंग, एंड मुजाहिदा इज़ देट विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द इंडिविजुअल पर्सन टू डू अगेंस्ट वंस तबीयत। यू हैव अमेजिंग कम्बाइंड एंड डन तावील ऑफ वट सीम्ड लाइक इख्तिलाफ ऑफ अकाबिर नक्शबंदी विद सच अदब एंड रिस्पेक्ट। सुभान अल्लाह, देर इज़ नो वे आई कुड हैव अंडरस्टूड दीज मैटर्स विदाउट इज वाल गाइडेंस। योर इल्हामी नुकात नुकता इन दिस आंसर हैज़ मेड मी स्पीचलेस। सुभान अबाउट मैनी मैटर्स इन नक्शबंदी आर इंटरनल एंड हिडन फ्राम ज़ाहिर, एंड सो एज अ रिजल्ट दोज हु आर मुखलिस दे अचीव अलॉट, बट दोज विद द इनसेंसियरिटी आल्सो हैव देयर रॉन्ग हिडन इन साइड, एंड देयर फॉर इस्ला इज नॉट ईजी टू मेक। तरीका सहाबा हैज़ बिकम क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू योर ब्लेस्ड आंसर एंड टीचिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल मेरे ख्याल में बात पूरी हो गई है, अब ज़रा देखता हूँ कि किसी और फोरम पर भी चीज़ें हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में बस पूरा हो गया। तो अभी अगर किसी ने सवाल करना है तो कर सकते हैं बराह रास्त।
हज़रत आपसे सवाल है कि अभी आप हज पे चले जाएंगे तो आपके बयान होंगे, तो हम घर में बयान सुनने में ज़्यादा बेहतर है, खानकाह में आके सुनने में ज़्यादा बेहतर है?
आप खानकाह में और घर में कुछ फर्क महसूस करते हैं? क्या फर्क है? हाँ, तो माहौल का कुछ फर्क होता है, बस यही है। वालेकुम सलाम।
हज़रत जी, मेरा सवाल है कि अल्लाह की इबादत इस तरह करना जिस तरह हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह को जिस तरह देख रहे हैं आप, तो इसको हम किस तरह तसव्वुर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं नमाज में और उसके अलावा बाकी भी सारे जो है ना?
MBBS में आखिरी साल जो होता है उसमें मेडिसिन और सर्जरी पढ़ाई जाती है। फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में कोई कह दे कि सर्जरी और मेडिसिन मैं कैसे सीख सकता हूँ, तो उसको क्या जवाब दिया जाएगा? बस उसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा, जब उधर पहुँच जाओगे तो फिर हासिल भी हो जाएगा। ये तो आखिरी मुकाम है, ये तो आखिरी मुकाम है। मतलब ये कि उसमें यूँ होगा कि पहले नफ्स मुतमैना हासिल करना पड़ेगा, जिसका कुरान में जिक्र है, या तो नफ्स मुतमैन फतखलीफी बारी उतखली जन्नत, फिर कैफियत एहसान हासिल करना पड़ेगा। और कैफियत एहसान के लिए होगा मतलब यह कि अंतावतुल्ला का अन्न का तरा फैलम तक उन तरा फैलन या राख। हाँ जी, तो किसी ने फारसी शेर कहा है, हाँ जी, उनने कहा है कि सूफी नशवत साफी तादर न कशत जामे बिस्यार सफर बायत ता पुख्त शवत खामे। सूफी उस वक़्त तक साफी नहीं बन सकता जब तक वो इश्क का जाम न खींचे, अल्लाह की मोहब्बत का जाम न खींचे, क्योंकि खाम से पुख्ता होने में बड़ा सफ़र है, बड़ा सफ़र है, और ये सफ़र तय करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहद अन्न मुहम्मद रसूल। الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا ولا जी बात हो गई पूरी। और किसी ने सवाल करना है?
हम नेट पे बयान सुनते हैं, एक घंटे का बयान सुनते हैं किसी का भी, अगर उस एक घंटे में हम एक बदनजीर हो जाए,
क्या
अगर कोई बदनजीर हो जाए तो सीर आ जाए गलती से भी, तो ये बयान सुनना बेहतर है या उस बयान को नहीं सुने तो बेहतर है?
बड़ा अच्छा सवाल है। फिकह का मशहूर कानून है कि जफे क्या है, जलब मनफात से दफे मुजरत ज्यादा अहम है, यानी सवाब के काम से ज्यादा गुनाह से बचना जरूरी है, क्योंकि सनाब सवाब तो मुस्तहब का भी हो सकता है, लेकिन गुनाह से बचना ये क्या है, फर्ज है, ठीक है ना, लिहाजा अपने आप को गुनाह से बचाना चाहिए।
हजरत ये जो कुर्बानी के जानवरों की तस्वीरें बनाते हैं, ये इसके बारे में आप क्या कहते हैं?
इसको जायज करार दें, नाजायज नाजायज है जो भी है, लोगों को तस्वीरों के साथ बड़ा शौक है पता नहीं क्यों, और मौसीकी के साथ। हाँ जी, हर चीज के अंदर मौसीकी, हर चीज के अंदर तस्वीर, एक फितना है, बला है। हाँ जी, अल्लाह ताला हम सबको इस चीज से बचाए। ये इसको मैं जरा अवामी जुबान में कहूँ, ये खारिश है, बस ये खारिश लोगों को लगी हुई है, खारिश ऐसी चीज है जितना खारिश करोगे मजीद बढ़ेगी। हाँ जी, ये खारिश बड़े बड़े लोग इसमें मुसीबत में मुब्तला है। बस उन बड़े लोगों को हम अपने से कम तो नहीं समझेंगे, लेकिन इस काम को उनके वजह उनकी वजह से ही भी नहीं समझेंगे। क्या ख्याल है, इस काम को उनकी वजह से ही भी नहीं समझे, क्योंकि उनकी बड़ाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से बड़ाई है, बड़ा नहीं है, बड़ी नहीं है, और हमसे बेहतर वाचे हैं, क्योंकि हमारी और कमजोरी होंगी। बस नमाज का वक्त करीब है, لا إله إلا الله 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 La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illahu, 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 illahu, la ilaha 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 illahu, ilaha illahu, la 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 ilaha illahu. Hak, 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 hak. Hak, 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 Allah, 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 Sayyidina Mawlana Muhammad Baris. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, As-salatu was-salamu ala khatam al-nabin. Allahumma hidina as-salatu al-mustaqim, as-salatu al-lazina an-amta alayhim, غير مغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. وصلى الله عليه وسلم.